ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தத்துவ ஜிக்யாசு சஜ்ஜனோ, ஹம் லோக் वैदिक शांति पाठ के यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद के यश्चंदसा मृषभो इति क्रम से तृतीय शांति पाठ के ऊपर विचार कर रहे हैं। उच्चारण करते हैं। ॐ यश्चन्दसा मृषभो विश्वरूपः,
ॐ यश्चन्दसा मृषभो विश्वरूपः,
छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव,
छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव,
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु,
स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु,
अमृतस्य देव धारणो भूयासम्,
अमृतस्य देव धारणो भूयासम्,
शरीरं मे विचर्षणम्,
शरीरं मे विचर्षणम्,
जिह्वा मे मधुमत्तमा,
जिह्वा मे मधुमत्तमा,
कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्,
कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्,
ब्रह्मणः कोशोसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, तो सज्जनों, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि उपनिषद के जो अध्येता है, जब वो स्वाध्याय पाठ करने बैठते हैं तो मेधा स्मरण शक्ति के अभाव में जो श्रुत ग्रंथ है उनका विस्मरण हो जाने का जिसके अंदर दोष है, तो वह दोष के कारण उपनिषद का श्रवण नहीं हो पाता है, और श्रवण नहीं होने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो अतः मेधा सिद्धि के लिए, स्मरण शक्ति के लिए यहां जप मंत्र बताए जा रहे हैं। प्रणव के लिए प्रणव से प्रार्थना की जा रही है। कैसे प्रणव से प्रार्थना की जा रही है? तो कहा, जो वेदों में ऋषभ है, वेदों में जो श्रेष्ठ है, और जो विश्व रूप है, विश्व ही जिसका रूप है, और जिसकी उत्पत्ति वेद से हुई है, छंदोभ्यो अध्यमृतात् संबभूव, जो अमृत वेद है, नित्य वेद है, प्रलय पर्यंत रहते हैं, इसलिए नित्य जो वेद है उससे जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो ओंकार है वो मेरे को मेधा से संपन्न करे, ये जप करना। ऐसा ये तीन वाक्य का जप करना, ओम यश्चंदसा मृषभो विश्वरूपः छंदोभ्योध्यमृतात् संबभूव स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। ये जप करना, इससे सज्जनों मेधा की सिद्धि होती है, अर्थात कि ग्रंथार्थ धारण शक्ति बढ़ती है। और ग्रंथार्थ धारण शक्ति बढ़ेगी तो प्रज्ञा बल के सामर्थ्य से ब्रह्म विद्या सुलभ हो जाती है। इसलिए कहा कि जो इंद्र है, जो विश्वरूप है, जो ऋषभ है, जो वेद से उत्पन्न है, ऐसा जो ओंकार है वो मेरे को मेधा से, मेधया यानी मेधा से स्पृणोतु यानी कि संपन्न करे। ठीक है, चलिए मेधा से संपन्न हो गए। उससे आगे भी एक भावना की गई कि अमृतस्य देवाधारण भूयासम, उसी ओंकार से ये प्रार्थना की गई कि हे देवः यानी हे दीप्तिमन प्रणवः अमृतस्य धारणः भूयासम, अमृत को मैं धारण करने वाला हो जाओ, आप मेरे को मेधा प्रदान करें जिस मेधा के फल स्वरूप मैं अमृत को धारण करने वाला हो जाऊं। तो अमृत कोई पदार्थ थोड़ा है कि उसको धारण करना है, धारण करना यानी पकड़ के रखना। तो भाष्यकारों ने कहा कि अमृत का अर्थ है यहां अमृताख्य, मोक्षाख्य साधन आत्मज्ञान। आप मेरे को मेधा प्रदान करेंगे तो मैं ये उपनिषद का श्रवण करूंगा और उपनिषद के श्रवण से मेरे को आत्मज्ञान होगा तो मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूंगा। इसलिए मोक्ष का जो साधनभूत आत्मज्ञान है उनका मैं धारण करने वाला हो जाऊं। तो इतने ग्रंथ से मेधा सिद्धि हेतु मंत्र बताए गए। अब यहां से आगे जो कहा जा रहा है वो शरीर के अंदर जो रोग आते हैं जिससे हम श्रवण नहीं कर पाते हैं, तो केवल मेधा सिद्धि हो इतना ही नहीं, शरीर भी कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए रोगादि राहित्य के हेतुभूत जो मंत्र है वो मंत्र को बताया, जिसका हम लोगों ने संक्षेप से विचार किया, किंतु पुनः मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको इस बात का स्मरण रहे। देखो कहा गया शरीरम में विचर्षणम, ओंकार से प्रार्थना की गई कि मेरा जो शरीर है वो विचर्षणम, पर से लगाना है भूयात, मेरा शरीर विचर्षण हो जाए यानी कि रोगादि से रहित हो जाए। देखे होता है कि नहीं ऐसा, कुछ शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर हम यहां प्रेमपुरी में आ पाते, नहीं, हमारे स्वाध्याय प्रवचन छूट जाता है तो आने के लिए शरीर की अनुकूलता चाहिए कि नहीं, तो शरीर भी अनुकूल होना चाहिए। इसलिए कहा कि मेरा जो शरीर है वो रोग रहित हो जाए, क्योंकि आपको बताया कि शरीर है वो धर्म का साधन है। और संसार में जो प्रथम नंबर का यदि कोई सुख हो तो क्या है, निरोगी शरीर। गुजरात में कहावत है, पहलो सुखते जाते हैं नर्या। अब यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास दुनिया भर के पदार्थ है उनका भोग ही नहीं कर पाएंगे। ठंडी की मौसम चल रही है, बढ़िया जो है मेथी पाक और उड़द का जो आटा डाल करके बनाते हैं वो अड़दिया पाक बना हुआ है, लेकिन खा नहीं पा रहे। क्यों? ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, या आजकल सबको एक शब्द याद हो गया, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डॉक्टर कहते हैं घृत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, यदि हृदय की ओर जाने वाली नसें यदि बंद हो जाएगी तो अटैक आ सकता है। तो देखो ये खाना अच्छा है कि नहीं, तो कब खा पाएंगे हमारा शरीर यदि स्वस्थ हो तो। इसलिए यहां पर ये भावना की गई कि शरीरम में विचर्षणम, मैं यानी मेरा जो शरीर है वो विचर्षणम यानी कि रोग रहित हो जाए। ठीक है, शरीर भी रोग रहित हो गया, किंतु जो हमारी कर्मेंद्रिया है वो कर्मेंद्रिया भी, उनका जो अपना कार्य है वो कार्य ढंग से करे। ठीक है शरीर स्वस्थ हो, किंतु स्वस्थ शरीर से व्यक्ति जो है, कर्म इंद्रियों से व्यक्ति निषिद्ध कार्य भी कर सकता है। निषिद्ध कार्य के लिए भी शरीर तो स्वस्थ ही चाहिए। इसलिए कहा कि शरीर स्वस्थ होने के बाद भी हमारे जो कर्मेंद्रिया है वो इसी में ही लगे। इसलिए कर्मेंद्रियों में जो प्रधानभूत जो जिह्वा है वाणी, उसके लिए यहां कहा गया कि मैं जिह्वा मधुमत्तमा, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी ये जो जीभ है, जीभ से अभिप्राय है वाणी, जिससे बोला जाए। तो बोलने के लिए क्या चाहिए, जिह्वा चाहिए कि नहीं, तो जिह्वा मेरी मधुमत्तमा यानी मेरी जीव, मेरी वाणी मधुर भाषिणी हो, मैं बोलूं तो सबको अच्छा लगे, तो उसको कहते हैं मधुर भाषण। अथवा दूसरी बात यह है कि मधुर भाषण का अर्थ है कि जो मधुर है वो ही बोले। तो कल आपको बताया मधुर क्या है, ये जो वेद, वेद क्या है, मधुर है। भगवान शंकर ने ये जो वाणी बनाई वो कैसी है, मधुस्फीता वाचः, मधु से संप्रित, मधु के अंदर डुबो करके बाहर निकाली हुई ये वाणी है। जैसे वो सूरत में एक घारी बनती है, वो घारी को घी में डुबो करके बाहर निकाल दे, चारों ओर घी घी लगा हुआ रहता, वैसे ही जो वाणी है वो भी कैसे हो, मैं जो भी बोलूं वो वेद वचन बोलूं, ये अभिप्राय है। वेद से मेरी वाणी चारों ओर से शराब बोर हो जाए, इससे अतिरिक्त और कुछ न बोलूं मैं, बस मेरी वाणी के द्वारा वेद पाठ होता रहे और वेद पाठ से अभिप्राय सत्य वचन यदि कहेंगे तो मैं जो भी बोलूं वो सत्य ही बोलूं, अनृत कभी ना बोलूं। देखो जय किसका होता है, सत्यमेव जयते नानृतम। भारत सरकार ने सूत्र स्वीकार कर रखा, सत्यमेव जयते, सब जानते लेकिन फिर भी असत्य को छोड़ ही नहीं पा रहे, इसलिए असत्य वदन मेरी वाणी ना करे, सत्य वदन ही करे। तो यही है मधुमत्तमा का अभिप्राय है। और इससे आगे अब ज्ञानेन्द्रियों के लिए कहते हैं, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम। कर्णाभ्याम यानी मेरे पास जो दो कर्ण है वो दोनों कानों से मैं भूरि विश्रुवम, भूरि भूरि यानी कि बहुत सुनूं, सुनते सुनते मैं थकू नहीं। हम लोग थक तो नहीं जाते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा नहीं, श्रवण जाके समुद्र समाना। हमारा जो कान है, कान के अंदर इतना स्पेस होना चाहिए कि सारा समुद्र जैसे भर जाए। समुद्र स्थानीय ये जो वेद की कथा है वो मेरे अंदर भर जाए। कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण शशकुली अवच्छिन्न आकाश को। ये जो हमारा कर्ण है ना, उसके अंदर जो छिद्र है उसको शशकुली कहते हैं। वो शशकुली से अवच्छिन्न जो अंदर आकाश है, खाली जगह, उनको कहते हैं कान। है तो बहुत थोड़ा किंतु कितना सुनता है। देखो जब से आंख खोली और सुनना प्रारंभ किया तब से आज तक हम सुनते आ रहे, कितना अंदर गया हुआ है बताओ। इसलिए कान के द्वारा यदि हम सुने तो वेद वचन सुने और कुछ नहीं। कान का कार्य सुनने का तो है, लेकिन यही जो है कल्याणकारी वचन सुने, अथवा ये जो वेदांत है उनका श्रवण करे। तो श्रवण का अर्थ आप लोग जो है ये मत समझे कि हम यहां करके सुने एक घंटा और सुन करके चले जाए, वो श्रवण सुनना मात्र जैसे हम लोग मानते हैं वैसा सुनने का अर्थ नहीं है। सुनने का अर्थ है देखो हमारे यहां का शब्द विषयक प्रत्यक्षम, यही सुनना। हम तभी कह सकते हैं कि मैंने सुना, जो सुना है उनका जो अर्थ है वो अर्थ का हमको प्रत्यक्ष हो। शब्द विषयक प्रत्यक्षम, शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ का हमको प्रत्यक्ष हो, तभी हम कह सकते हैं कि मैंने सुना। जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता है तो कोई परिचय कराते हैं, तो देखिए उनके शरीर को तो आप पहले से ही देख रहे, उनका जो पिंड है शरीर, उनका जो आकार प्रकार है, उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो गोरा है काला है मोटा है पतला है कि ऊंचा है कि नीचा है, वो तो आप आंख से उनको देख ही रहे। लेकिन जब पूछते कि ये कौन है, तो मित्र बताते हैं कि वो अमुक अमुक व्यक्ति है, तो तुरंत कहते हैं कि हां मैंने पहचान लिया। तो देखिए श्रवण के अंदर ये सामर्थ्य है कि अर्थ को प्रत्यक्ष करा देता है। तो श्रवण का अर्थ है शब्द का प्रत्यक्ष हो जाना, और यहां पर श्रवण किसका है? वेदांत का। वेदांत का हम श्रवण कर रहे, तो वेदांत का जो अर्थ है उस अर्थ का प्रत्यक्ष होना चाहिए। देखो वेदांत का अर्थ क्या है? ब्रह्म। वेदांत में जिसका प्रतिपादन है उनको कहते हैं ब्रह्म। वेदांत से अभिप्राय है गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। इन तीनों को क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांत का अर्थ है वेद का जो निर्णय, अंत कहते हैं निर्णय को, अंत यानी समाप्ति। अंत कहते हैं समाप्ति। अब जैसे टोटल लगा लिया तब फिर उसके बाद कुछ बाकी रहेगा? वही समाप्ति, वो निर्णय हो चुका। अब देखिए अब ये प्रतियोगिता चलेगी तो उसके बाद जब निर्णय होगा तो कहते कि अब निर्णय हो चुका, अब इसको पुरस्कार बांट दो। तो कहते नहीं अंत यानी कि निर्णय, वेद का जो निर्णय है। वेद का निर्णय क्या है? ब्रह्म। वेद के अंदर किसका प्रतिपादन है? एकमात्र ब्रह्म का। इसलिए आपको बताया था नहीं, धर्म ब्रह्म प्रतिपादकम प्रमाण वाक्यम वेद। धर्म और ब्रह्म का जो प्रतिपादन जिसमें है ऐसे प्रमाण वाक्य को वेद कहते हैं। निरपेक्ष रवह, ऐसा शब्द जिसको अपनी बात कहने के लिए अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, जो स्वतः प्रमाण है। हमारे यहां दो प्रकार के प्रमाण माने गए, एक स्वतः और परतः। तो जो स्वतः प्रमाण है उसको कहते हैं निरपेक्ष रवह शब्द। तो वेद के द्वारा एकमात्र ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया। तत्तु समन्वयात, इस सूत्र से ये निश्चय किया गया कि सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य अवसान एकमात्र ब्रह्म में है। तो यदि हम जो है वेदांत को श्रवण करें तो वेदांत का जो तात्पर्य अवसान जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का जो है हमको बोध होना चाहिए, तभी वो श्रवण माना जाएगा। देखिए जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है ऐसे गुरु के मुख से जो सुना हुआ वाक्य है उस वाक्यार्थ विज्ञान को कहते हैं श्रवण। गुरुमुख से वेदाध्ययन, गुरु के मुख से यदि हम वेदाध्ययन करें और वेद का जो अर्थ है उस अर्थ का हमको साक्षात्कार हो, उस साक्षात्कार पर्यंत को कहते हैं श्रवण। केवल कान से सुन लेना मात्र श्रवण नहीं है, किंतु साक्षात्कार भी होना चाहिए। अब भला साक्षात्कार कब होगा? कि वाक्य का बोध हमको हो तभी होगा। देखो कोई व्यक्ति आकर के कोई ऐसी कोई अप्रसिद्ध भाषा में बोले, जैसे जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है उनके सामने कोई खड़ा होकर के यदि अंग्रेजी बोले तो सुनने वाले को शब्दार्थ बोध होगा कि वो क्या कह रहा है? नहीं होगा। तो वो फिर पूछे कि आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? ऐसा पूछेगा, सुन रहे हैं? तो जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो कहेगा हम सुन तो रहे लेकिन समझ नहीं रहे, ऐसा बोलेगा। वो सुन तो कान से रहे कि आप अंग्रेजी बोल रहे, कुछ ऐसा बोल रहे लेकिन अर्थग्रह हमको नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में कब आएगा कि जो सुना हुआ वाक्य है उस वाक्य का जो तात्पर्य है वो समझ में आए, तो तभी हो सकता है कि वाक्य के अंतर्गत जो पद है वो पद का अर्थ यदि हमको पता हो तभी वाक्यार्थ बोध होगा। पद का ही ज्ञान नहीं है तो पद का समूह ही तो वाक्य होता है, और पदार्थ ज्ञान नहीं है तो फिर पद का जो समूह है वाक्य वो वाक्यार्थ बोध भी नहीं होगा। तत्त्वमसि महावाक्य सुना, लेकिन तत् का और त्वम पद का जो तात्पर्य है वो यदि हमने अभी निश्चय नहीं किया है तो तत्त्वमसि महावाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव नहीं होगा। इसलिए श्रवण का अभिप्राय है तात्पर्य निर्णय होना, और हमारे यहां आचार्यों ने एक तात्पर्य निर्णय के एक प्रारूप बनाया हुआ है, उसके अंदर वो वाक्य फिट हो जाए तो निश्चय होगा कि ये वाक्य का ये अर्थ है। वो प्रारूप है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। इनको तात्पर्य निर्णायक छह लिंग बोलते हैं। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, ऐसा मीमांसकों ने माना। उपक्रम और उपसंहार जिसमें देखा जाए, जहां से उपक्रम हुआ उसी में उपसंहार हो, और बीच में बार बार उन्हीं का एक कथन हो, अभ्यास बार बार वही एक ही बात कहना,